नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों के कुल 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन जिलों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल हैं। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर आज ही वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि राज्य में मतदान की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 33,133 स्थानों पर स्थापित 75,064 मतदान केंद्रों पर कुल 573 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में नादिया के कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दमदम, हावड़ा और सप्तग्राम में रैलियों को संबोधित किया। सप्तग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कोलकाता के जोरासाको, नादिया के चकदाह और हावड़ा के उदय नारायणपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हुए भ्रष्टाचार, रोजगार और उद्योगों के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कालना और बोगांव में रैलियां की। दिल्ली में अब केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी का प्रमाण पत्र होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और ये निर्णय उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण गतिरोध पिछले कुछ घंटों में और गहरा गया है। ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी तेज हो गई है और आसपास के इलाकों में नई घटनाएं सामने आई हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने घोषित समुद्री निषेध क्षेत्र में व्यवस्था और सुरक्षा भंग करने के आरोप में 2 मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। समुद्री निगरानी एजेंसियों ने यह भी बताया कि ओमान के तट के पास एक तीसरे जहाज पर गोलीबारी की गई जिससे उसके पुल को काफी नुकसान पहुंचा। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की समाप्ति के बावजूद वो अपनी मौजूदा नौसैनिक स्थिति को बनाए रखेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्यापक समझौते पर पहुंचने तक दबाव जारी रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पोस्ट में जवाब देते हुए कहा कि प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां वास्तविक बातचीत में मुख्य बाधाएं हैं। यूरोप की बड़ी एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा एयरलाइंस ने अक्टूबर तक 20,000 छोटी दूरी की उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह निर्णय ईरान युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और कुछ देशों में जेट ईंधन की कमी की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया है। दक्षिणी लेबनान पर हुए इसराइल के हवाई हमले में मारे गए लेबनानी पत्रकार का शव हमले के घंटों बाद मलबे से निकाल लिया गया है। दैनिक अल अखबार ने पुष्टि की है कि दक्षिणी गांव अल तिरी पर हुए हमले में उसकी पत्रकार अमल खलील मारी गई। सूचना मंत्री पॉल मोरकोस ने भी खलील की मौत की पुष्टि की। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम की कपाट अब से कुछ देर में 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।